गुरु का स्मरण सभी प्रकार के पातकों को नष्ट करता है, क्योंकि गुरु एक अकिंचन शिष्य को सर्व प्रकार के श्री से विभूषित कर देते हैं। ऐसे श्रीमान गुरु, लक्ष्मीवान गुरु और साथ में श्री के साथ वैराग्य, लोगों का धन धन भोगने के लिए होता है, लेकिन महात्माओं का धन वह त्याग के लिए होता है। त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। तो महायोगी राजम भजे संतरामम, जहां सारे वैभव फीके पड़ जाते हो, भोग से नहीं अपितु योग से शरीर को त्याग किया जाता हो, ऐसा पीठ और इस पीठ के परंपरा में श्रेष्ठ आचार्य प्रवर, जिनकी कथा हम लोग कुछ क्षण पहले सुन रहे थे, जहां वैराग्य और श्री दोनों ही समुल्लसित होती है। जैसे कहा जाता है कि एक बीज का हमने त्याग धरती पर किया तो धरती हमने हमको हजार गुना दिया। तो एक महात्मा के त्याग से यह संपूर्ण नगर नहीं, संपूर्ण प्रांत न कहें, संपूर्ण राष्ट्र कहें तो भी छोटा पड़ेगा, विदेश तक लोग सुखी हुआ करते हैं। ऐसी जो परंपरा है, यह परंपरा कल्प वृक्ष की परंपरा है कि आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकल आपदाम, जहां कल्प वृक्ष भी आकर के आराम करता हो, शयन करता हो, वह कहां करेगा। जहां धनी लोग जो सबके इच्छाओं को, भिखारियों के इच्छा को, दीनों के इच्छा को अन्न दान करके, वस्त्र दान करके पूरा करते हैं, जब उनके भी सिर में आग लगती है तो वह वैराग्य के लिए महाराज श्री के चरण में आते हैं कि कुछ हमें ऐसा उपदेश करिए कि शांति मिल जाए। तो वह जो है, वह सदगुरु का शरण ही संसारानल दीप्त शिरः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपगत्य तमनुसरति। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जा करके और उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे भक्तगण श्रीमान भी जहां आ करके नीचे शयन करके, अधः शयन करके महाराज श्री के चरणों में शांति की अनुभूति करते हैं। यह वही वैराग्य पीठ है जहां पर डोगरे जी स्वरूप संत आकर के शरीर त्याग करने के लिए लालायित हो, ऐसी यह गद्दी है इस पीठ के, जहां सामान्य लोग आ करके और मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जन्म तो ले लेता है, लेकिन उसमें आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये पांचे पांचे चीजें ऐसी होती है कि उसमें पशुओं के जैसी ही होती है। जो भी मन में आए, जहां का मन करे खा लेगा और खाकर बीमार पड़ता है, जहां मन करेगा सो जाएगा, निद्रा पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और जब आहार कुछ भी खाएगा तो रोग का भय बनेगा, ग्रहण किसी का कर लेगा, धन ले लेगा तो विचार में पड़ जाएगा, भय उसको उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि एक एक इंद्रियों के विषयों में एक एक जीव मारे जाते हैं। तो यह सेवते पंच भीरे व पंच, तो जो पांचे पांच का सेवन करता हो भला उसकी क्या दशा होगी। तो ऐसे जो पांच पांच विषयों का सेवन करके भयभीत मनुष्य है, वह गुरु की शरण में जब आता है तब जाकर के उसे अनुशासन के द्वारा बड़ी प्रेम से गुरु जो है समझा करके उसे मानवता प्रदान करते हैं और वह मनुष्य बनता है, तब उसमें मनुष्यता आती है, क्योंकि मनुष्यता बड़ी दुर्लभ है। मत्वा कर्माणि सेव्यते इति मनुष्य, जो मन मतलब मनन अवबोधन चिंतन करके कर्मों का सेवन करता है, कितना खाएं कि बीमार न पड़े, कितना खाएं कि स्वाद भी रहे और रोग भी न हो और स्वास्थ्य भी बचा रहे और सात्विक बुद्धि हो, धर्म की तरफ मति गति हो, यह सारा उपदेश गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। यदि गुरु न होते तो शायद यह उपदेश न होता, उपदेश नहीं होता तो ये शास्त्र नहीं होते, ये शास्त्र नहीं होता तो शायद हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए होते, क्योंकि हम गुरु की वाणी रूपी शास्त्र को सुनने के लिए ही तो इकट्ठा होते हैं। कुछ आचरण से शिक्षा होती है, कुछ वाचिक होती है। जहाँ आचरण में संदेह होता है वहां पूछा जाता है, गुरु महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे कि महाराज श्री ने कहा कि राजा और महाराजा की बात कहा, आप महाराज कैसे हैं? तो महत्सु अपि वैराग्य भावे न राजते इति महाराज, जो महान हो गए, पुरुष हो गए, राजा इत्यादि, उनमें भी अपने वैराग्य के बल से धन देने पर भी जो लोभी नहीं होता, धन देख करके जो लोभी नहीं होता, काम की सारी वस्तुओं को देख करके भी जो मुग्ध नहीं होता है, ऐसे जो है वो महाराज है। तो उनके जीवन में गणपति पैदा होते हैं जो महाराज होते हैं। कहा ये गणपति क्या है, उसी गणपति तत्व का यहाँ वर्णन बतलाया है। तो कहा कि वो गणों में श्रेष्ठ गण होते हैं। कहा वो कैसे गण है आप बतलाइए तो पहले। तो कहा कि संपूर्ण पृथ्वी, सागर, वायु, आकाश, जल, तेज, ये सब गण हैं और उन सब के वो पति हैं। पाति रक्षति ति पति, एक स्त्री का पति होना कितना कठिन काम है ये अनुभूति होती है गृहस्थों को। और जो संपूर्ण जो पृथ्वी देवलोक इत्यादि सबके वैराग्य के बल से उन गणों का अधिपति बना हो वो गणपति है, वो विघ्नराज है, क्योंकि उसके यहाँ विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि उसके मन अपने बस में हो गए हैं। विघ्न उसी को आते हैं जिसके बस में अपने मन नहीं है, और जिसके बस में अपना मन हो गया है उसको विपत्ति और विघ्न नहीं आएंगे, वही गणपति है। गणपति वही है जिसके मन अपने बस में है, इसलिए वह किसी की लेने की इच्छा नहीं रखता है। तो जितने लोग हैं लेने वाले वो सब उसके गण बन जाते हैं। जैसे चींटियां शक्कर के पास लग जाती है और शक्कर वाला शक्कर गिरा देता है, शक्कर खाता नहीं है, उसका जीवन परार्थ के लिए ही है, वही गणपति बन सकता है जो त्यागी है, जो तपस्वी है, है ना, जिसका जीवन परार्थ है, वो गणपति तत्व है। कहा महाराज ये सब तो ठीक है, गणपति है, गणपति की पहले पूजा होती है। कहा गणेश जी की पूजा का जो प्रक्रम है वह आगे क्यों बतलाया, किस लिए गणेश जी जो है गणों में श्रेष्ठ मान लिए गए, यह आप बतलाएंगे क्या कि गणपति श्रेष्ठ क्यों है? गोस्वामी जी ने कहा ना वहां, महिमा जासु सुमिर गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जिसकी गणेश की ऐसी महिमा है कि जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती है, और सर्वप्रथम पूजा उस वैराग्य वाले सभी गणों के गणपति का हो जाए तो भला अब उसे गण क्यों हैरान करेंगे। जब पति की ही पूजा हो गई तो संपूर्ण गण का तो अध्यक्ष है, गणाध्यक्ष वो गणाध्यक्ष है, जितने भक्त मंडली है सबका गणाध्यक्ष है। गण गण का मतलब होता है समूह। एक जगह तंत्र शास्त्र की व्याख्या के अनुसार बताया कि जो भूतादि पंच अपने शरीर में है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, और पांच इंद्रिय गण और पांच तन्मात्रा गण, तन्मात्राएं मतलब वो एकदम छोटे महाभूतों के रूप हैं जिससे कि पांच भूत उत्पन्न होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और जो एकादश इंद्रिय है, इन सभी गणों का जो अधिपति है वह गणपति है। तो जब इन इंद्रियों के विषय में हम सोचते हैं, इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, तो हम किसी को विघ्न प्रदान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ में ही लाभ में ही तो हम बिगड़ते हैं। पड़ोसी के पास अधिक धन है तो हम धन की आकांक्षा करते हैं, संगात संजायते कामः, बगल वाले के पास चार गाड़ी है तो हमारे यहाँ भी हो जाए, नहीं होती है तो उसे जलन करते हैं। तो जब जलन करते हैं तो उसके प्रति मुंह से कुछ न कुछ निकलता है, उल्टा सीधा उसकी निंदा करते हैं, वो कहीं न कहीं से सुन लेता है तो वो हमारी निंदा करता है, बस अब दोनों के क्रिया में विघ्न उपस्थित हो गया। और यदि अपने मन को संयमित रखा, उसकी प्रशंसा किया, अरे भाई क्या बात है, हमको बड़ा खुश हुआ तूने चार गाड़ी लाया, तेरे पास चार चार गाड़ी है, मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मेरा ऐसा पड़ोसी समृद्ध है। वो कहेगा, मित्र आओ चलो इस गाड़ी पर चलो बैठते हैं घूमने, तुम्हारी ही गाड़ी है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। वह आप उस गण के भी अधिपति बन गए। क्यों? तो इंद्रियों को बस करके आपको क्या प्रयुक्त करना है, क्या प्रयोग करना है, यह विवेक पूर्वक जो है, वैराग्य पूर्वक ये सब सारी चीजें आती है। और जहां वहां अपना अज्ञान पैदा हो गया यह हमसे भिन्न है, वहीं वहां उससे विरोध चालू हो जाएगा। तो यह वाणी का प्रभाव है। वाणी तत्व जो है वह गणेश की उपासना से प्राप्त होती है, और सरस्वती की उपासना से तो है ही है, वैसे तो हर देवता की उपासना से प्राप्त होती है, लेकिन गणेश का बुधवार का जन्म है और इसलिए वह बुद्धि कारक है, और बुद्धि कारक होने से वाणी के भी कारक ग्रह गणपति है, गणपति के अनुष्ठान से विद्या प्राप्ति होती है, क्योंकि तो विद्या जो होती है सा विद्या या विमुक्तये, न तो नियुक्तये न तो भुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या मोक्ष दिलाने वाली है। और मोक्ष जब आएगा तो उसके साथ जो साम्राज्य है, जो धन है, ये सब सारी चीजें अपने आप चली आती है। तो एक बार की घटना है कि गणेश जी महाराज और कार्तिकेय जी महाराज दोनों ही खेल रहे थे, दोनों में ये हुआ, हम बड़े हैं हम बड़े हैं। माता ने कहा कि भाई देखो ये मेरे पास एक मोदक है, और इस मोदक को जो सूंघ लेगा वह अमर हो जाएगा, और वह संपूर्ण शास्त्रों को अमर्मज्ञ होगा, तंत्र शास्त्र में प्रवीण हो जाएगा, लेखक होगा, चित्रकार होगा, जैसी चाहे वैसी चित्र दौड़ने लगेगा, बनाने लगेगा, विद्वान होगा, और ज्ञान मतलब मोक्ष को प्राप्त करेगा, और विज्ञान मतलब इस लोक की जितनी कलाएं हैं सभी कलाएं उसको आ जाएगी। अब तो दोनों पुत्रों में होड़ लगी, आखिर यह कौन प्राप्त करे। उसने कहा माता ने कि तुम्हारी